बैठे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से लुका रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको फिर से मेरा एक बार नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी प्रभु की दया से कुशल हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, हमने पिछले अध्ययन में देखा था कि यीशु ने एक अधर्मी न्यायी के दृष्टांत द्वारा हमें समझाया था कि परमेश्वर जो धार्मिकता का स्रोत है, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए लालायित रहता है, और फिर फरीसी और चुंगी लेने वालों की कहानी के द्वारा प्रार्थना की विधि और वास्तविक जीवन का अर्थ समझाया था। यीशु ने यही कहा कि जो छोटे बच्चों को परमेश्वर से दूर रखते हैं, उनके गले में चक्की का पाट बांधकर उन्हें समुद्र में डालना चाहिए। ऐसे कठोर शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया और यीशु के पीछे चलने के लिए सांसारिक माया मोह मन में वास न करे। अंत में हमने देखा था कि जिनकी आंखें नहीं है वे यीशु को पहचानते हैं, परंतु आंख वालों ने उन्हें नहीं पहचाना और क्रूस पर चढ़ा दिया। हमारा आज का अध्ययन है लुका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय से, और हम देखेंगे कि जिसे प्रभु यीशु को पाने की इच्छा हो उसके साथ वह अवश्य संगति करेगा। जक्कई की घटना और निष्ठावान सेवक बनना कैसा आवश्यक है। इसके बाद यरूशलेम में फसह के पर्व में यीशु का आगमन, जहां वह यरूशलेम के लिए रो पड़ता है, वह मंदिर को भी सांसारिक क्रियाकलाप से मुक्त कराता है। हम देखते हैं यरीहो में यीशु जक्कई का उद्धार करता है। कृपया स्मरण रखें कि यीशु यरूशलेम को जा रहा है और वह जानता है कि वहां उसे घात किया जाएगा। हम लुका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके एक पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। मेरे मित्रों, लुका के वृतांत में यीशु सामरिया में से होता हुआ यरूशलेम को जा रहा था। वह आम रास्ते से नहीं जा रहा था। क्यों? क्योंकि वह जानता था कि वहां एक पापी को उद्धार की प्रतीक्षा है, वरन वहां दो या तीन पापी उद्धार के लिए तैयार थे। यदि आप यहां यीशु की गतिविधियों को समझने से चूक करते हैं तो इस संपूर्ण बाइबल अंश का अर्थ आपकी समझ में नहीं आएगा। यरीहो वही नगर है जिसे परमेश्वर ने यहोशू के हाथ में कर दिया था और श्राप दिया था उसे जो इसका पुनः निर्माण करेगा। राजा आहाब के युग में उसके पुनरुद्वार करने वाले ने श्राप का दंड भोगा था, परंतु यीशु के युग में वह पर्यटक केंद्र था, छुट्टियां बिताने का स्थान था, चुंगी लेने वाले यहीं रहते थे, वे आज के माफिया की नाई थे, आम जनता उससे घृणा करती थी। लुका लिखता है कि यीशु वहां से होकर जा रहा था। यीशु इस संसार से भी होकर निकला, वह यहां रहने नहीं आया था, वह केवल अपनी जान बलिदान के रूप में देने के लिए आया था। हम तो इस संसार में लंबे समय तक रहना चाहते हैं, उसके यरीहो में से होकर जाने में ईश्वरीय भेद छिपा था, इसे आप ना भूलें। हम लुका 19 अध्याय उसके दो पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, और देखो जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। मेरे मित्र, इस व्यक्ति के बारे में पद दो बातें स्पष्ट करता है। परमेश्वर के आत्मा की अपनी ही विधि है, वह किसी के बारे में हमें वह सब बता दे जो जानना आवश्यक है। पहली बात जो इस व्यक्ति के बारे में कही गई है वह है कि उसका नाम जक्कई था। जब मैंने उसके नाम का अर्थ देखा तो मुझे हंसी आ गई। जक्कई का अर्थ है पवित्र। उसके माता पिता ने जन्म के समय उसे देखा तो सोचा होगा कि वह संसार में मूल्यवान है, उसके साथ ही उसका उपहास करते होंगे और भाई पवित्र जन क्या हाल है। एक चुंगी लेने वाले का नाम कैसा विचित्र नाम है। मेरे मित्रों, जक्कई चुंगी लेने वालों का सरदार था। उसके माता पिता ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वह चुंगी लेने वाला बनेगा। चुंगी लेने वालों को ऐसी रोमी सरकार को पैसा देकर किसी क्षेत्र में चुंगी का ठेका लेना होता था और वे मनमानी चुंगी वसूल करते थे। इसी कारण वे बहुत धनवान हो जाते थे। उन्हें मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। वे दूर ही से खड़े होकर अपनी छाती पीट कर प्रार्थना करते थे, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, जैसा कि हमने लूका के सुसमाचार 18 अध्याय उसके 13 पद में देखा। जक्कई परमेश्वर के पास लौट आना चाहता था। जक्कई भी अन्य चुंगी लेने वालों की नाई विधवाओं पर अत्याचार करता था, गरीबों पर अत्याचार करता था। यदि कोई कर चुकाने में सक्षम नहीं है तो वह उनकी भूमि, उनका घर आदि रख लेता था। जबकि वह चुंगी लेने वाला बन गया था और वह बहुत धन कमा लिया था, उसे समझ में आ गया था कि संसार की संपत्ति उसके मन को शांति नहीं दे सकती है। उसके अंतःकरण ने उसे बेधा कि वह उस पेशे का त्याग करे, परंतु इस मार्ग से लौट पाना कठिन था। प्रभु जानता था कि उसे दया की कामना है। इसी कारण यीशु यरीहो से होता हुआ यरूशलेम की ओर गया। वह जक्कई को अपनी संगति में लेना चाहता था, यरूशलेम की ओर नहीं परंतु क्रूश की ओर। हम लुकार्ची सुसमाचार 19 अध्याय उसके 3 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। मेरे मित्र, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा एक मित्र है जो बाइबल सेमिनारी में अध्यापक है। वह समझ नहीं पा रहा था कि यरीहो में एक अंधा व्यक्ति था या दो अंधे व्यक्ति थे, क्योंकि मत्ती लिखता है कि यीशु ने यरीहो में दो अंधे मनुष्यों को चंगा किया, जबकि लूका एक ही का उल्लेख करता है। मैंने उनसे उपहास के रूप में कहा कि वहां दो अंधे मनुष्य थे जिनमें एक जक्कई था, क्योंकि लिखा है भीड़ के कारण वह देख ना सकता था। वह छोटे कद का व्यक्ति था, अतः वह गूलर के पेड़ पर उसे देखने के लिए चढ़ गया। हम लूका 19 उसके 4 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। मेरे मित्रों, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि गूलर का पेड़ चिकना होता है और उसकी पहली शाखा बहुत ऊंची होती है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि गूलर के पेड़ पर चढ़ना भी बहुत कठिन है। उसने किसी प्रकार प्रयत्न किया और वह उस पेड़ पर चढ़ गया। उसने सोचा कि उसे कोई नहीं देख पाएगा, परंतु प्रभु यीशु जानता था कि वह वहां है। इसी कारण तो वह यरीहो से निकल कर जा रहा था। हम लूका 19 उसके 5 पद में पढ़ते हैं, जब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। मुझे पूरा विश्वास है कि यीशु को उसके इस कार्य पर हंसी आई थी। हम भी उसे देखते तो हंसते कि देखो वह कहां पर चढ़ा हुआ है। यीशु ने उसे देखा और कहा होगा कि जक्कई, मुझे देखने के लिए तू पेड़ पर चढ़ बैठा है, नीचे आ, मुझे तेरे घर चलना है। चढ़ने में तो उसे बहुत समय लगा होगा, परंतु उतरने में उसे समय नहीं लगा। यीशु किसी फरीसी के या जनमान्य व्यक्ति के घर में नहीं गया, वह एक चुंगी लेने वाले के घर गया जो समाज की दृष्टि में बुरा था। हम लूका 19 उसके 6 और 7 पद में पढ़ते हैं, वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। मेरे मित्र, जक्कई बहुत आनंदित था, परंतु सब लोग कुड़कुड़ाने लगे। कौन सब लोग थे? अपवादी जन। यीशु उसके घर कितने देर रुका हमें स्पष्ट नहीं किया गया है, परंतु अंत में जब वे बाहर आए तो जक्कई यह कहता दिखाया गया है, जिसे हम लूका 19 उसके 8 पद में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। मेरे मित्र, यहाँ पर देखिए कि जक्कई के साथ कुछ तो हुआ है कि उसने यीशु के सामने घोषणा की कि वह गरीबों को लूट रहा था और अपना आधा धन वह गरीबों में बांटेगा, तथा जिनसे उसने अवैध कर वसूल लिए थे उन्हें 4 गुना लौटा देगा। वह निर्गमन की पुस्तक 22 अध्याय में लिखे मूसा के आदेशों का पालन कर रहा था। अब वह एक नया मनुष्य था। मित्रों, जक्कई और यीशु के परस्पर वार्तालाप के विषय यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है। पवित्र आत्मा किसी कारणवश इस वार्तालाप को गुप्त रखना चाहता है। यीशु प्रायः 2 ही बातें करता है, पहला मनुष्य की आवश्यकता और दूसरा उस आवश्यकता को पूरा करने का परमेश्वर का सामर्थ्य। यीशु के लिए आवश्यक नहीं था कि वह जक्कई को उसके पाप का बोध करवाए। जक्कई जानता था कि वह एक पापी है। हम भी जानते हैं कि हम एक पापी हैं। यीशु ने उससे कहा कि उसके पापों के निवारण का प्रबंध है। उसने कहा, मैं यरूशलेम जा रहा हूं कि मनुष्य के पापों के लिए अपनी जान दूं, जिससे कि तेरे लिए अर्थात जक्कई पर दया का आसन उपलब्ध हो। हम लूका 19 अध्याय उसके 9 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है। प्रिय मित्र, जक्कई जब चुंगी लेने वालों की श्रेणी में आया था, तब उसके लिए मंदिर में स्थित दया आसन का द्वार बंद हो गया था, तथा दया आसन प्रभु यीशु और क्रूस पर बहाए जाने वाले उसके लहू की ओर संकेत करता था। प्रभु जक्कई पर स्पष्ट कर देना चाहता था कि वह मरने के लिए यरूशलेम जा रहा था, उसकी मृत्यु उसके लिए वास्तविक दया आसन प्रदान करेगी। इस चुंगी लेने वाले ने मसीह यीशु को अपना जीवन दिया और नई सृष्टि बन गया। हम लूका 19 उसके 10 पद में पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मेरे मित्र, यहां पर हम ध्यान देते हैं कि जक्कई ने बाहर आकर अपनी गवाही नहीं दी थी। उसने स्पष्ट कहा कि उसने गरीबों का शोषण किया है और वह उसका दंड भरेगा। मेरे मित्रों, संसार को आपकी गवाही की आवश्यकता नहीं है कि वे जाने कि आपने नया जीवन पाया है, वे इसे आपके जीवन में देखेंगे। यदि जक्कई ऐसा नहीं करता तो मैं कभी नहीं जान पाता कि उसका जीवन बदल गया है या नहीं। जक्कई का मन परिवर्तन याकूब की बात को सिद्ध करता है। याकूब की पत्री 2 अध्याय उसके 18 पद में हम पढ़ते हैं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास तुझे अपने कार्यों द्वारा दिखाऊंगा। मित्रों, जक्कई ने ठीक ऐसा ही किया था, क्योंकि यीशु ने उसके साथ भोजन किया और वह एक नई सृष्टि हो गया। मेरे मित्रों, आज का संसार सुनता कम और देखता अधिक है। आपका जीवन कैसा है? प्रभु यीशु आपके स्थान में जा रहे हैं, वह उनके साथ भोजन करना चाहते हैं जो उसे नहीं जानते हैं। वह आपके उद्धार और आपकी आत्मा के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। क्या उसने आपके मन के द्वार पर दस्तखत दी है? क्या आपने उसे घर में बुलाया है? क्या आपने उसे अपने हृदय के द्वार में अंदर आने का मौका दिया है? यदि नहीं, तो आज आप उसे दें। हम आगे देखते हैं 10 मुहरों का दृष्टांत, जिसे हम लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 11 पद में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, जब वे ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट हुआ चाहता है। मेरे मित्रों, इसराइलियों में आम धारणा यही थी कि यीशु यरूशलेम अपना राज्य स्थापित करने जा रहा है, परंतु सच तो यह था कि वह मृत्यु को गले लगाने यरूशलेम को जा रहा था। यीशु ने इसी धारणा में परिवर्तन लाने के लिए उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। हम लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 12 पद में आगे पढ़ते हैं, सो उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला गया ताकि राजपद पाकर फिर आए। मित्रों, यहां पर धनी मनुष्य से उसका अभिप्राय था यीशु स्वयं। उसे स्वर्गीय पिता ने राज्य सौंपा है, वह आपसे बहुमत नहीं चाहता है। जब वह फिर आएगा तब या तो मनुष्य उसे स्वीकार करके राज्य का वारिस होगा या फिर नाश होगा। इस समय वह उद्धार करता है, राजा नहीं। हम लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 13 और 14 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, और उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मुहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर में रहने पर उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे। मेरे मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि मनुष्य ने यीशु को यही संदेश दिया, परंतु परमेश्वर उन पर विश्वास करके अपने पुत्र को रोकेगा नहीं। पहली बार तो उनको उनके मन की इच्छा पूरी हुई और उन्होंने उसे क्रूस पर ठोंक दिया। हम लूका 19 उसके 15 से 17 पद में आगे पढ़ते हैं, जब वह राजपद पाकर लौट आया तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को जिन्हें रोकड़ दी थी अपने पास बुलवाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया है। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरे मोहर से 10 और मोहरे कमाई है। उसने उससे कहा, धन्य है उत्तम दास, तू धन्य है, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि अभी यीशु गया हुआ है और उसने जिन्हें मुहरें दी है वे आप हैं। उसने आपको भंडारी बनाया है। आपकी मुहरें कुछ लोग, एक नगर या केवल एक परिवार हो सकते हैं। आपको विश्वास योग्य होना है, चाहे आप 5 की संख्या में बढ़ा लें या 10 की। प्रभु जब लौटेगा तब आपको इसका प्रतिफल देगा। हम लूका 19 उसके 18 से 27 पद में आगे पढ़ते हैं, दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से 5 और मोहरे कमाई है। उसने उससे कहा कि तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख तेरी मुहर यह है जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखी, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है। जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूँ। तू मुझे जानता था कि मैं कठोर मनुष्य हूँ, जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता, और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूँ। तो तूने मेरे रुपयों को कोठी में क्यों नहीं रख दिया कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता? और जो लोग निकट खड़े थे उसने उनसे कहा, वह मोहर उससे ले लो, और जिसके पास 10 मोहरे हैं उसे दे दो। उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, उसके पास 10 मोहरे तो हैं। मैं तुमसे कहता हूँ कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, उनको यहां लाकर मेरे सामने घात करो। मित्रों, यहां पर ध्यान दीजिए कि प्रभु ने विश्वास योग्यता देखी थी और उसी का फल उन्हें मिला। हम लूका 19 उसके 28 पद में पढ़ते हैं, ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। यीशु यरूशलेम की ओर बढ़ा चला जा रहा है, जहां वह अपने वैरियों के हाथों स्वयं को सौंप देगा। अब हम देखते हैं यीशु का यरूशलेम प्रवेश। सुसमाचारों में यीशु के यरूशलेम प्रवेश का मिला जुला विवरण है, परंतु उन्हें संयोजित करने पर ज्ञात होता है कि वह 3 बार नगर में गया था, एक ही दिन में 3 बार या 3 दिनों तक प्रतिदिन। पहला प्रवेश सप्त के दिन, उस दिन वहां व्यापार बंद था। मार्कुस रति सुसमाचार 11 अध्याय उसके 11 पद में हम पाते हैं, वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर 12 के साथ बैतनिय्याह गया। और हम देखते हैं दूसरा प्रवेश सप्ताह के पहले दिन जो रविवार था, उसने कहा, सर्राफों को देखा और उन्हें खदेड़ा। वह राजा का रूप था जिसे हम मत्ती सुसमाचार 21 अध्याय उसके 12 और 13 में देखते हैं। और तीसरा प्रवेश सप्ताह के दूसरे दिन अर्थात सोमवार को था, उसने मंदिर में शिक्षा दी और बीमारों को चंगा किया, जिसे हम 41 से 44 पद और 47 से 48 पद में पाते हैं। यह उसका भविष्य का रूप था। वह यरूशलेम की दशा पर रोया। हम लूका 19 उसके 29 से 34 पद में आगे पढ़ते हैं, और जब जैतून नाम पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा कि सामने के गांव में जाओ, और उसमें पहुंचते ही तुम्हें एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ मिलेगा, उसे खोल कर लाओ, और यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। मेरे मित्र, इस घटना को मैं आश्चर्यकर्म नहीं मानता, क्योंकि यह स्वाभाविक ही था कि वह अपने पिछले यरूशलेम भ्रमण में ऐसी व्यवस्था करता था। उसके मित्र यीशु की प्रतीक्षा में गधी के बच्चे को बाहर बांध कर बैठे हुए थे। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि उसके अधिकार का प्रयोग है, प्रभु को इसका प्रयोजन है। हम लूका 19 उसके 35 से 38 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर सवार किया। जब वह जा रहा था तो अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे, और निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ के ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे कि धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। मेरे मित्र, यहां पर जन समूह को यीशु के इस व्यवहार का महत्व समझ में नहीं आया था, शिष्यों को भी यह बात समझ में नहीं आई। कुछ दिनों बाद ही वह भीड़ चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, उसे क्रूस पर चढ़ाओ, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। देखिए शिष्यों के लिए यूहन्ना इस संदर्भ में क्या लिखता है, उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके बारे में लिखी गई थी, और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया। हम लूका 19 उसके 39 से 40 पद में पढ़ते हैं, तब भीड़ में से कितने फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट, उसने उत्तर दिया कि तुम में से कहता हूँ, यदि ये चुप रहें तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। यीशु के इस प्रदर्शन के कारण रोमी सैनिकों का उत्साहित होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि यीशु ने अपने अनुयायियों की श्रद्धा एवं हर्षोल्लास स्वीकार किया, और दूसरी बात यह थी कि उसने उन्हें शांत नहीं कराया। यीशु ने उन्हें धर्मशास्त्र की भविष्यवाणी के कारण शांत नहीं किया था, जिसे हम भजन संहिता 24 उसके 7 में पाते हैं, हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। परंतु यह प्रवेश क्रूस की मृत्यु पर समाप्त हुआ। दूसरी बार जब वह आएगा तब वास्तव में उसका प्रवेश विजय प्रवेश होगा। इब्रानियों के पत्र 9 अध्याय उसके 28 में लिखा है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। जकरिया 14 अध्याय उसके 4 पद में लिखता है कि जब यीशु फिर आएगा तब उसका पांव जैतून पर्वत पर ठहरेगा और वह यरूशलेम में प्रवेश करेगा। उसकी इस मृत्यु और मृत्यु में से पुनः जी उठने के कारण हमें उद्धार का वरदान प्राप्त होगा। मित्रों आइए अब हम आगे देखते हैं। यीशु रोया। लुका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 41 से 42 पद में लिखा हुआ है, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू, हाँ तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। मेरे मित्रों उनकी आंखें आज भी बंद हैं। मैंने उनके एक विशाल सम्मेलन का चित्र देखा है। उन्होंने पताका पर लिखा था, विज्ञान हमारे युग में शांति लाएगा। विज्ञान ने उसे शांति नहीं, आधुनिक हथियार और एटम बम दिए हैं। हम आगे लुका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 43 और 44 पद में पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे वैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे, और तुझे और तेरे बालकों को जो मुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने वह अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। मेरे मित्रों यह भविष्यवाणी सन 70 में पूरी हुई। रोमी राजा तीतुस की सेना ने मंदिर को ध्वस्त कर दिया और बड़ा नरसंहार किया था। हम लुका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 45 से 48 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खोह बना दिया है। और वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था, और महायाजक और शास्त्री और लोगों के रईस उसे नाश करने का अवसर ढूंढते थे, परंतु कोई उपाय ना निकाल सके कि यह किस प्रकार करें, क्योंकि सब लोग बड़ी चाह से उसकी सुनते थे। मित्रों यह दूसरी बार था जब यीशु ने मंदिर का शोधन किया, और उसने इस बार कठोर भाषा काम में ली। यह इसराइल में यीशु की सेवा का अंतिम चरण था। मेरे मित्रों यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूँ कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही प्रभु के इस वचनों के द्वारा आशीष प्राप्त किया है। आने वाले समय जब हम मिलें तो होने दे कि हम और अधिक उसके वचन से आशीष प्राप्त कर सकें। तब तक आप इस वचन पर विचार करें और अपने आप को प्रभु की निकटता में लाएं, ताकि प्रभु के आशीषों को और भी अधिकाई से अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, नया हौसला मैंने जीने का पाया, जीवन सजाया सजाया। जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, नया हौसला मेरे दिल में है आया, जब से मसीहा मेरे दिल।
श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
हमको है यकीन, हम जाएंगे वहीं जहां यीशु रहता है। हमको है यकीन, हम जाएंगे वहीं जहां यीशु रहता है। यीशु कोई उलझन होगी, न कोई दुख होगा, न कोई दुश्मनी, पर कोई शांति रहेगी।